भाग तीन, वेबुस्यादो के कुछ और प्रवचन। खंड एक, सहिष्णुता की शक्ति। वेबुस्यादो ने कहा, एक समय असुरों के राजा वेपचित्त तथा तावतींस अर्थात 33 देवलोक के राजा शक्र, पाली में शक अर्थात इंद्र, परस्पर युद्ध की स्थिति में थे। यहाँ हम बता दें कि इस कथा के लिए वेपचित्ति सूत को पठम वग शक संयुक्त सगाथा वग संयुक्त निकाय सूत पिटक में देख सकते हैं। अंग्रेजी में पाली टेक्स्ट सोसाइटी लंदन द्वारा 1979 में प्रकाशित किंड्रेड सेइंग्स वॉल्यूम 2 पृष्ठ 283 से 287 देख सकते हैं। तो सयादा ने आगे बताया कि असुर पराजित हो गए तथा उनके राजा को शक ने पकड़ लिया और उसे देवताओं के सभागार सुधम्मा सभा में गले में 5 रस्सियों से बांधकर बंदी बना दिया। यहाँ हम बता दें कि इस सभागार का नाम एक महिला सुधम्मा के नाम पर है, जिन्होंने विश्राम गृह के लिए शिखर प्रदान किया था। तो सयादा ने आगे कहा, असुरों का राजा यह बिल्कुल सहन नहीं कर सका और क्रोध से अभिभूत हो गया। जब वेपचित्त ने शक को अपने राजसी महल में प्रवेश करते देखा तो वह अपने कारागार से उन्हें गाली देने, अपमानित करने और बुरा भला कहने लगा। जब शक पुनः राजमहल से बाहर निकले तो भी वेपचित्त देवराज को अपशब्द बोलने, लांछन लगाने तथा उनके प्रति दुर्व्यवहार करने से स्वयं को रोक नहीं सका, किंतु शक शांत एवं मधुर बने रहे। जब शक के सारथी मातली ने यह देखा तो उसने शक से कहा, महाराज, असुरों का यह राजा आपको बारंबार अपमानित करता है, क्या आप इसे इतनी शांतिपूर्वक इसलिए स्वीकार करते हैं क्योंकि आप उससे भयभीत हैं? शक ने उत्तर दिया, आयुष्मान, यह असुरों का राजा मेरे अधीन है, उसके साथ मैं जो चाहूं वह कर सकता हूं। फिर मातली ने पूछा, तो फिर महाराज, आप उसके इस प्रकार के व्यवहार को क्यों स्वीकार करते हैं? शक ने उत्तर दिया, वह मेरे अधीन है, मैं जैसा चाहूं उसे वैसा दंड दे सकता हूं, किंतु फिर भी मैं उसकी उग्रवाणी तथा मानहानिपूर्ण आक्षेपों को सहन करता हूं। शक ने ऐसा बर्ताव क्यों किया? क्योंकि सहिष्णुता से प्राप्त होने वाले महान लाभों को वे समझते थे। यद्यपि वे जानते थे कि वे अपने बंदी के साथ जो भी चाहे कर सकते हैं तथा उनका बंदी उसका कोई प्रतिशोध लेने में सक्षम नहीं है, फिर भी वे शांत एवं संयमी बने रहे। बुद्ध ने कहा है कि धैर्य का यह सर्वोच्च रूप है, सहन करते रहना। यद्यपि आपके लिए सहन करना आवश्यक नहीं है, यद्यपि आप स्थिति को परिवर्तित कर सकते हैं, जब आपके लिए कोई अन्य विकल्प न हो तब भी धैर्य का अभ्यास करना निसंदेह अच्छा है, किंतु स्वेच्छा से सहन करना सर्वोच्च एवं उत्कृष्ट प्रकार का धैर्य होता है। शक महान शक्तिमान है, परंतु यदि वे ऐसे अपमानों पर दुर्बलता के साथ प्रतिक्रिया करें तो उनका क्या होगा? सयादा के इस प्रश्न का एक शिष्य ने उत्तर दिया, असुरों के राजा की तरह वे पराजित होंगे तथा उन्हें कारावास सहन करना पड़ेगा, उन्हें दुख भोगना होगा। सयादा बोले, हाँ निसंदेह, जो कोई भी वह सब होने का प्रयास करता है जो वह नहीं है तो उसे बहुत दुख भोगना पड़ता है, क्या नहीं पड़ता है? तो भले ही वे कार्यवाही कर सकते थे फिर भी उन्होंने अपने मन में धैर्य के विकास के अभ्यास का अनुसरण किया और यह अत्यंत महान बात है। प्राचीन काल के आर्य लोगों ने सदैव यह अभ्यास किया था, शक यह अभ्यास करते थे जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, तथा बोधिसत्व भी इसका अभ्यास करते हैं, क्या नहीं करते? जब हमारे बोधिसत्व ने नागराज भूरिदत्त के रूप में पुनर्जन्म लिया था तो वे अत्यंत धनी थे। यहाँ हम बता दें कि इस कथा के लिए भूरिदत्त जातक, जातक संख्या 543 देखी जा सकती है। उस जन्म में बोधिसत्व एक नाग अर्थात एक दैवी सांप के रूप में पुनर्जन्म लेते हैं। भविष्य में उस लोक से निकलने के लिए मनुष्य लोक में उपोषित व्रतों का पालन करते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों की एक श्रृंखला के कारण वे एक सपेरे द्वारा पकड़े जाते हैं, उन्हें मादक द्रव्य पिलाया जाता है और उनकी सभी हड्डियों के टूट जाने तक उन्हें पीटा जाता है। चूंकि वे दृढ़ संकल्प के साथ अपने मन को इच्छा, ईर्ष्या, नशा एवं क्रोध से मुक्त रखते हुए उपोषित व्रत का पालन कर रहे होते हैं, वे सपेरे द्वारा किए गए आघातों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करते। उनको अपने वश में कर सपेरा गांवों और कस्बों में धनोपार्जन के लिए उनका उपयोग करता है। कुछ दिनों के बाद बोधिसत्व अपने भाइयों में से एक के द्वारा मुक्त करा लिए जाते हैं तथा सपेरा कोढ़ी हो जाता है। तो सयादा ने आगे कहा, उनके पास उतने ही धन कोष थे जितने की शक के पास थे। उन्होंने अपने सारे धन को अलग रखकर उपोषित व्रत के पालन का निर्णय लिया, किंतु जब वे उपोषित व्रत का पालन कर रहे थे तो एक सपेरा आया और वहां बोधिसत्व को पाया। अब बोधिसत्व की तुलना में उसकी शक्ति नगण्य थी। क्या हमारे बोधिसत्व शक्ति से संपन्न थे? शिष्य ने उत्तर दिया, मैं यह जातक कथा नहीं जानता भंते। आप जानते तो हैं, बस आपको भय है कि यदि आपको इसे बताना पड़े तो आप थक जाएंगे। बोधिसत्व की शक्ति इतनी महान थी कि वे केवल तिरछी नजर से देखकर किसी को भी भस्म कर सकते थे, तो फिर इस सपेरे का मंत्र बोधिसत्व पर क्या प्रभाव डाल सकता था? बिल्कुल किसी काम का नहीं। परंतु बोधिसत्व टस से मस नहीं हुए, क्योंकि उन्हें नैतिक शिक्षा पदों के शील के भंग होने का भय था। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी आंखें भी नहीं खोली। अतः सपेरे ने उन पर अपना दांव चलाया तथा उन्हें अपनी शक्ति के अधीन कर लिया। तब उसने उनके साथ बहुत कुछ किया। यदि बोधिसत्व तंग नहीं होना चाहते होते तो वे उड़कर ऊपर आकाश में जा सकते थे, अथवा वे धरती में घुस सकते थे, या फिर जैसा कि हमने कहा, वे सपेरे को तिरछी नजर से देख सकते थे। वे शक्र या एक महान ब्रह्मा का रूप भी धारण कर सकते थे, क्या वे नहीं कर सकते थे? वे कर सकते थे भंते, किंतु उन्होंने इनमें से कुछ भी नहीं किया। सपेरा उन्हें बलपूर्वक ले गया तथा उनके मुख में शक्तिशाली विष डाल दिया। जब उसने ऐसा किया तो हमारे बोधिसत्व ने मन की दिव्य पवित्रता का अभ्यास किया और इस पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं की। क्या यह इस कारण से कि वे सपेरे की तुलना में दुर्बलतर थे? नहीं, वे शक्तिशाली थे बनते, किंतु वे सहन कर रहे थे। वे क्यों सहन कर रहे थे? वे एक महान व्यक्ति थे जिन्होंने बुद्धत्व की आकांक्षा की थी तथा वे पारमी पूरी कर रहे थे बनते। यदि आपके साथ ऐसा हो जाए जबकि आप उपोषित का पालन कर रहे हो, तो क्या आप भी वैसा ही करेंगे? मैं उतना सहन करने में सक्षम नहीं हो पाऊंगा बनते। यदि ऐसा करने वाला व्यक्ति मुझसे दुर्बल हो, जैसा कि इस कांड में था, तो मैं उसे धराशायी कर दूंगा। और यदि आप महान शक्तियों से संपन्न होते तो मैं उनका निश्चित रूप से प्रयोग करूंगा बनते। क्या आप शांत बने रहेंगे यहां तक कि अपनी आंखें भी नहीं खोलेंगे? बिल्कुल नहीं बनते, मैं उन्हें पूरी तरह से खोलूंगा। यदि आप उस प्रकार व्यवहार करें तो जो आप चाहते हैं, क्या वह आपको प्राप्त हो पाएगा? नहीं बनते। हाँ, तो आप देखिए कि मेरा क्या तात्पर्य है। बोधिसत्व ने उस प्रकार व्यवहार किया, किंतु उसका अंत यही नहीं था। जिस तरह से धोबी कपड़ा धोते समय कपड़े को पीटते हैं, उसी प्रकार उन्हें पीटा गया, किंतु उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, या यहाँ तक कि वे हिले भी नहीं। बोधिसत्व ने शांतिपूर्वक काफी समय तक सपेरे की आज्ञा का पालन किया। सपेरे ने उनसे जो भी कहा उन्होंने वह किया तथा उससे भी और अधिक, और उन्होंने यह सब इसलिए किया कि वे अपने संकल्प को पूरा कर सकें। यही पारमी को परिपूर्ण करना है। उन्होंने उनकी चरम सीमा तक उन्हें पूरा किया तथा दूसरों को जो परिणाम मिलते हैं, क्या उन्हें उससे कुछ कम मिला? नहीं बनते। उन्हें जो परिणाम मिले वे उच्चतर एवं उत्कृष्टतर हैं। उन्होंने पारमी के उच्च स्तर तक पहुंचने के लिए अभ्यास किया। अब यदि कोई व्यक्ति इसलिए सहन करता है क्योंकि कोई और विकल्प नहीं है, तो वह भी अच्छा है। किंतु यदि कोई व्यक्ति सहन नहीं करता जो उसे करना चाहिए, तो क्या होगा? वह दुख भोगेगा बनते। हाँ, मैंने अभी सहनशीलता के विषय में थोड़े ही विस्तार से बताया है। यदि मुझे इसे पूरी तरह समझाना हो तो इसका कोई अंत नहीं होगा। सहनशीलता से वर्तमान में तथा शेष संसार में, अर्थात भवचक्र या जन्म और मृत्यु के चक्र में लाभ मिलता है। यदि आप वर्तमान में आनंदमय होना चाहते हैं, तो आपको अपनी सहनशीलता पर अवश्य काम करना चाहिए। यदि आप भविष्य में आनंदमय होना चाहते हैं, तो आपको अपनी सहनशीलता पर अवश्य काम करना चाहिए। यदि आप अपने वर्तमान जीवन में कुछ उपलब्ध करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो सहनशीलता एवं धैर्य का विकास कीजिए। क्या नागराज ने यह पारमी उपलब्ध नहीं की? उन्होंने की भंते। हाँ, उन्होंने की। नागराज भूरिदत्त ने सील अर्थात नैतिकता में स्वयं को स्थापित किया तथा उसका पालन किया। यदि वे केवल कठिनाइयों से बचे होते, तो क्या वे कुछ भी अर्जित कर पाते? नहीं बनते। सपेरे के आने पर यदि वे आकाश में उड़ गए होते, तो क्या वे उन्हें मिल पाती तथा धैर्य एवं सहनशीलता में पूर्णता प्राप्त करने में क्या वे सक्षम हो पाते? नहीं बनते। और यदि उन्होंने शक का रूप धारण कर लिया होता तो तब भी वे परिणाम प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो पाए होते बनते, किंतु उन्होंने अपनी शक्तियों का इस प्रकार उपयोग नहीं किया। यह व्यक्ति मुझे तंग कर रहा है ऐसा सोचते हुए यदि उन्होंने उसकी ओर आंख खोली होती तब क्या हुआ होता? सपेरा राख में बदल गया होता बनते, परंतु उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। यद्यपि सपेरे में उनको प्रभावित करने के लिए कतई कोई शक्ति नहीं थी, तथापि वे पारमी पूरा करने के लिए शांतिपूर्वक उसका साथ देते रहे, यहाँ तक कि वे हिलना भी नहीं चाहते थे। वे वहाँ उपोषित व्रत का पालन करने गए थे और इस दृढ़ निश्चय के साथ कि सपेरा उनके साथ जो भी चाहे कर सकता है, अतः उन्होंने सब कुछ सहन किया। एक बार जब उन्होंने संकल्प ले लिया तो उसे पूरा किया। आपके विषय में कैसा है? जब आप उपोषित करते हैं, जब आप उपोषित व्रत के पालन का निर्णय लेते हैं तो आप उसे करते हैं, क्या आप नहीं करते? हाँ बनते, हम उपोषित का पालन करते हैं। जब आप नैतिक शिक्षा पदों को ग्रहण करते हैं तो आप पूरे दिन भर उनका पालन करते हैं, क्या आप नहीं करते? हम करते हैं बनते। नैतिक शिक्षा पदों में स्वयं को प्रतिष्ठापित करने के पश्चात क्या आप उनका अवश्य पालन करते हैं? चाहे कुछ भी रोड़ा बनकर रास्ते में आ जाए, चाहे कुछ भी हो, हम पूरा पालन नहीं करते बनते। किंतु क्या आपको एक पूरे दिन का अभ्यास करने को नहीं मिल पाता? नहीं बनते, हम पूरे एक दिन तक नहीं करते। एक दिन में से आप कितना कर पाते हैं? उपोषित शिक्षा पदों को ग्रहण करने के पश्चात हम एक दिन की प्रगति करने का प्रयास करते हैं, किंतु वास्तव में कभी कभी हम एक दिन से अधिक पीछे चले जाते हैं। बनते, कितने अधिक? संभवतः डेढ़ दिन। बनते, तो आप एक दिन के लिए इस शील को ग्रहण करते हैं और फिर आप एक दिन में डेढ़ दिन पीछे आ जाते हैं, तो क्या ऐसा प्रयास पर्याप्त है? नहीं, नहीं है बनते। स्वयं को वीर्य, पाली में वीर्य अर्थात ऊर्जा में स्थापित करने के पश्चात हम अपनी सहिष्णुता एवं धैर्य से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, क्या इसे हर जगह प्रयोग में लाना संभव नहीं है? जब आप यहाँ से वापस घर लौटते हैं तो आपका ज्ञानेंद्रियों की ऐसी विषय वस्तु से सामना होगा जो आपके लिए प्रिय हैं, तथा ऐसी विषय वस्तुओं से होगा जो आपके लिए अप्रिय हैं। आपका इन दो प्रकार की विषय वस्तुओं से सदैव ही समागम होता है, क्या आप सहमत हैं कि इन दो प्रकार की विषय वस्तुओं में से किसी न किसी से हर समय आपका सामना होता है? कोई न कोई विषय वस्तु सदैव ही होती है जो या तो हमारे लिए प्रिय होती है अथवा अप्रिय होती है। भन्ते, दोनों में से कोई एक सदैव ही होती है। आपका जिससे सामना हो उसे सहन कीजिए। यदि आप एक धैर्य एवं सहनशीलता पूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं तथा ज्ञानेंद्रियों की इन विषय वस्तुओं से जब आपका समागम होता है तो क्या होता है? यदि हमारा सुखद वस्तुओं से सामना होता है तो हम अपने प्रयास के माध्यम से उन्हें अस्वीकार करते हैं, और यदि हमारा समागम अप्रिय वस्तुओं से होता है तो हम अपने प्रयासों को और अधिक मजबूती से स्थापित करते हैं तथा उन्हें निष्कासित कर देते हैं, क्या वास्तव में? अच्छा, यदि आप किसी सुखद विषय वस्तु के संपर्क में आते हैं तो क्या अकुशल मनस्थितियां प्रवाहित होंगी? ऐसा हो सकता है बनते, इसलिए उन्हें प्रवाहित होकर प्रवेश करने से रोकने के लिए हमें प्रयास की स्थापना करनी होगी तथा सहन करना होगा। और यदि ऐसे अनेक संवेदन आपकी ओर आते हैं तो तब हमें और भी अधिक सहन करना होगा बंते। और यदि आपका केवल कुछ ही से सामना पड़ता है तो तब हमें केवल थोड़ी सी ही सहनशीलता की आवश्यकता पड़ती है बंते। अच्छा, जब आप घर जाते हैं और बच्चे बातें करते तथा शोर मचाते हैं, केवल थोड़ा ही शोर हो किंतु आपके लिए यह असहनीय होने के लिए पर्याप्त हो, तो आप क्या करते हैं? उस स्थिति में मुझे धैर्यवान होने का प्रयास करना होगा बंते। यदि आप ऐसा करते हैं तो क्या आप लाभान्वित नहीं होते? मैं होता हूँ बंते। यदि वे और अधिक कोलाहलपूर्ण तथा असहनीय हो जाएं तो क्या होगा? तब मुझे अत्यधिक प्रयास करना होगा तथा सहन करना होगा बंते। क्या ऐसा है? क्या आप वास्तव में ऐसा करेंगे? मैंने उचित उत्तर देने के लिए ऐसा कहा बंते। आप अभी घर नहीं गए किंतु आपने अभी से यह अभ्यास प्रारंभ कर दिया है। जब आप इसका अभ्यास करेंगे तो आप बलवान हो जाएंगे। इसमें कोई भी थकावट नहीं होती है। या क्या आप सोचते हैं कि सहनशीलता का जीवन व्यतीत करते करते आप थक जाएंगे? नहीं बनते, यह थकाने वाला नहीं है। क्या इसमें आपका कुछ व्यय होता है? इसमें कुछ भी खर्च नहीं होता बनते। क्या आप कुछ खो देते हैं? हम धैर्य एवं सहनशीलता के माध्यम से अधिकांश लाभ प्राप्त करते हैं बनते। हम कुछ भी नहीं खोते, परंतु हम में श्रद्धा, प्रयास, कौशल तथा विवेक का अभाव है बनते। यदि आप इस तरह के विचारों से भ्रमित हैं तो आपको लगता होगा, क्या मुझे अब यह करना चाहिए, क्या मुझे वह करना चाहिए? तब आप अंतर्द्वंद में फंस जाएंगे। बस यह स्मरण रखिए कि आपके लिए सहनशील होना आवश्यक है। क्या मुझे यह करना चाहिए या वह? क्या मुझे इस ओर अग्रसर होना चाहिए या उस ओर? यदि वह नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ है। इस प्रकार के विचार आ सकते हैं, परंतु आपको वही करना चाहिए जैसा कि हमने अभी कहा है। केवल इसी एक बात के बारे में सोचिए बंते। क्या आपका तात्पर्य है कि हम मात्र सहनशील हों? हाँ, यदि आप ऐसा करते हैं तो सहनशीलता के माध्यम से सब कुछ अच्छा होता जाएगा। जो कुछ भी है वह ठीक हो जाएगा। जब मैं एक युवा भिक्षु ही था तब बर्मी लोग इस देश में अधिक सभ्य नहीं होते थे, किंतु भारतीय लोग होते थे। जब मैं अपने पिंडपात अर्थात भिक्षाटन पर निकलता तो वहाँ एक वृद्ध भारतीय व्यक्ति था जो जैसे ही मुझे देखता वह मुझे दान देने के लिए दौड़ता हुआ आता था। अपनी वृद्धावस्था के बावजूद भी यह वृद्ध भारतीय गलियों में डगमगाते हुए सामान बेचता था, और जब वह मुझे देखता तो दान देने के लिए वह दौड़ता हुआ यहाँ तक कि बड़ी दूर से आता। अच्छा, ऐसा कैसे है कि हमारे बर्मी लोग सभ्य नहीं थे? माता पिता बच्चों को पैसा देते थे और वे इससे नमकीन और मिठाइयाँ खरीदते थे जितनी उनमें खरीदने की सामर्थ्य थी। यह वृद्ध भारतीय वही बेचता था। अच्छा, तो वे उसे कैसे बुलाते थे? वे चिल्लाते थे, अरे भारतीय कुत्ते। वे उसे ऐसा कहकर बुलाते थे, सुना आपने? तो चारों ओर से बच्चे उसे बुलाते थे, और वह क्या करता था? वह मुस्कुराते हुए उनके पास जाता था। वह मुस्कुराता ही रहता था, और जिन्होंने उसे उस प्रकार सबसे पहले बुलाया उसके पास वह पहले जाता था। वह उसके पास आता और वे उसे भारतीय कुत्ता कहते रहते। वह यह नहीं सोचता था कि अच्छा केवल एक पैसे की कोई चीज खरीदने के लिए क्या ये लड़के मुझे इस तरह से पुकार सकते हैं, मैं जो इनका वरिष्ठ एक वृद्ध व्यक्ति हूँ। नहीं, बस वह उन बालकों के पास पहुँचने का प्रयास करता था। यदि नन्हे बच्चे आपको वैसे ही पुकारें जैसे कि वे इस वृद्ध मनुष्य को पुकारते थे, तो आप क्या करेंगे? निसंदेह हम क्रोधित होंगे बंते। क्या आप केवल क्रोधित होंगे और मौन बने रहेंगे? मैं चुप नहीं रहूंगा बंते, संभवतः मैं उन बच्चों को पीट दूंगा। तब क्या आपको उनसे पैसा मिलेगा? उसके अतिरिक्त और क्या होगा? बर्मी लोग मुझे मारेंगे बंते। हाँ तो देखिए, ऐसा उसके साथ नहीं हुआ, न ही उसने कोई अकुशल मनोदशा उत्पन्न की। वह क्रोधित नहीं हुआ। जब मैं एक युवा भिक्षु के रूप में अपने भिक्षाटन पर निकलता तो यही स्थिति मुझे मिलती। यद्यपि वे उसे इस प्रकार की गाली देकर पुकारते थे, फिर भी वह क्रोधित नहीं होता था। यदि वह क्रोधित हुआ होता तो क्या वह व्यवहार कुशल अर्थात हितकर अथवा अकुशल अर्थात अहितकर होता? अकुशल बनते। तो अब आप सब बुद्ध की शिक्षा अनुसार सहनशील होना चाहते हैं, क्या आप नहीं होना चाहते? यद्यपि हम शिक्षा का पालन कुछ सीमा तक करना चाहते हैं, हम उतने सहनशील नहीं हैं बनते। अन्य बातों से विचलित मत होइए, बस एक काम कीजिए, सहनशील बनिए। क्या आप समझ रहे हैं? आपके साथ रहने वाले लोग आपको चाहे जितना परेशान क्यों न करें, स्वयं बस पूरी तरह से इसी का अभ्यास कीजिए। यदि अन्य लोग सदैव उचित व्यवहार करते तो क्या होता? तो मैं अत्यंत प्रसन्न होता बनते। किंतु भले ही वे अराजक हो जाएं, मुझे शांत एवं सुखद रहना चाहिए, यह जानते हुए कि यदि लोभ उत्पन्न होता है तो वह मेरे लिए अकुशल होगा। किंतु यदि यह अतिशय हो जाता है तो आप क्या करेंगे? मैं सहनशील रहूंगा बनते। हाँ, केवल यह स्मरण रखिए, किसी अन्य बात की चिंता मत कीजिए। यदि आप इस पुस्तक अथवा उस पुस्तक में ढूंढते हैं कि देखिए वे क्या कहते हैं, तो आपकी स्वयं की साधना क्षीण होगी। बस सहनशीलता का अभ्यास कीजिए। यदि आप केवल इस बात के लिए प्रयास करते हैं तो आपको कुछ भी उपलब्ध हो सकता है।